नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन पर बात करेंगे।
जी बिल्कुल।
ये अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। शीर्षक है ब्रह्म वर्चस्व अर्जन की साधना व उसका मर्म।
तो आज कोशिश रहेगी कि इस उद्बोधन से ब्रह्म वर्चस्व मतलब वो दिव्य तेज और आध्यात्मिक शक्ति, उसे पाने का रास्ता और उसका जो असल सार है उसे समझें।
जी बिल्कुल।
और देखिए, पूज्य गुरुदेव शुरू में ही एक बहुत बुनियादी बात साफ करते हैं। वो कहते हैं कि साधना की सफलता बाहरी कर्म कांडों से कहीं ज्यादा साधक की अपनी आंतरिक पवित्रता पर, उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है।
अच्छा।
वेद मंत्र भी तभी फल देते हैं जब हमारा अंतरंग मतलब हमारा अंदर वो शुद्ध हो।
अच्छा।
इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने श्रृंगी ऋषि का वो बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है ना। राजा दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए खास तौर पर उन्हें ही क्यों चुना गया था? हाँ, उनका चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि उनका जीवन, उनका रहन सहन, वो असाधारण रूप से संयमित और शुद्ध था। वो तो जंगल में पले बड़े थे, है ना, सांसारिक चीजों से बिल्कुल दूर। तो इस पवित्रता के कारण उनका अन्मय कोश और मनोमय कोश, जिसे हम स्थूल शरीर और मानसिक ऊर्जा का स्तर कह सकते हैं, वो एकदम निर्मल थे।
अच्छा।
और यही वजह थी कि उनके मंत्रोच्चार इतने शक्तिशाली हुए कि खुद सोचिए, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए। ये असल में मंत्रों की शक्ति थी जो ऋषि की अपनी अंदरूनी शुद्धि से फलीभूत हुई।
तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पहला कदम ही सात्विकता है, खासकर हमारे भोजन में? पूज्य गुरुदेव ने तो खुद का जिक्र किया है, 24 साल तक जौ की रोटी और छाछ पर रहे वो, बिना नमक शक्कर के। ये तो आज सोचना भी मुश्किल है।
हाँ बिल्कुल। वो इस पर बहुत जोर देते हैं। सात्विक आहार ही तन और मन को साधना के लिए, भजन पूजन के लिए तैयार करता है, ताकि वो जो दिव्यता है वो हमारे अंदर ठहर सके, प्रतिष्ठित हो सके। और इसमें जीभ पर नियंत्रण ये बहुत जरूरी है। अन्न, जल, यहाँ तक कि हमारा आसपास का वातावरण, सबका असर पड़ता है।
अच्छा।
तो अन्नमय कोश यानी शरीर के स्तर की शुद्धि हो गई। इसके बाद बात आती है प्राणमय कोश की। पूज्य गुरुदेव ने इसे एक मैग्नेट या चुंबक की तरह बताया है।
या?
ये कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है।
हाँ, ये बहुत सटीक उपमा है। बिल्कुल।
प्राणमय कोश यानी हमारी जो वाइटल एनर्जी या प्राण ऊर्जा का स्तर है, वो अपने चारों ओर से श्रेष्ठता को, अच्छी ऊर्जा को वैसे ही खींचता है जैसे चुंबक लोहे को।
अच्छा।
और जब ये जागृत होता है तो व्यक्ति में गजब का साहस, हिम्मत, संकल्प शक्ति पैदा होती है। नेपोलियन का आल्प्स पार करना सोचिए, या गांधी जी का अहिंसा के बल पर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देना।
हाँ।
ये सब उनके जागृत प्राणमय कोश और उस अदम्य साहस के ही चमत्कार थे। असली ताकत शरीर की नहीं होती, वो प्राणों की, हिम्मत की होती है।
पर इस प्राण शक्ति को जगाने के लिए तपस्या क्यों जरूरी बताई गई है?
देखिए, हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, उनकी अपनी मांगे होती हैं, आदतें होती हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल।
तो तपस्या एक तरह से इन्हीं मांगों पर नियंत्रण पाने का अभ्यास है। प्राण ऊर्जा को एक दिशा देने का, उसे केंद्रित करने का अभ्यास है।
जैसे जीव को साधने के लिए अन्नमय कोष ठीक करना पड़ा, वैसे ही प्राण शक्ति को जगाने के लिए और उससे चमत्कार पैदा करने के लिए शरीर की इच्छाओं से लोहा लेना पड़ता है, तपस्वी बनना पड़ता है।
ये तो आत्मा अनुशासन का मार्ग हुआ।
बिल्कुल।
और फिर प्राण के बाद मन, जिसे पूज्य गुरुदेव ने जादू का पिटारा या भानुमति का पिटारा कहा है, ये सुनकर तो और उत्सुकता होती है।
और ये सच भी है, मन जो है वो असीम शक्तियों का भंडार है, पर हम उसका कितना सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं? बहुत छोटा सा। अगर हम इसका जो बिखराव है उसे रोक सकें, इसे एकाग्र करना सीख लें, तो अंगद, हनुमान, भीम जैसी शक्ति भी पा सकते हैं।
सच में?
हाँ।
जैसे भागीरथ की एकाग्रता देखिए, गंगा को धरती पर ले आए, अर्जुन का निशाना सिर्फ मछली की आंख की एकाग्रता की शक्ति ही तो है। स्वामी विवेकानंद का किस्सा है, शून्य पर घंटों बोल सकते थे वो। वो क्या था? उनकी मानसिक एकाग्रता की शक्ति।
पूज्य गुरुदेव बाहरी शरीर मतलब स्थूल शरीर से ज्यादा सूक्ष्म शरीर के महत्व पर जोर देते हैं। जैसे गांधी जी या अष्टावक्र ऋषि का उदाहरण दिया जाता है, जो शायद बाहर से साधारण दिखते थे पर अंदर से
अत्यंत शक्तिशाली थे।
बिल्कुल सही। असली शक्ति वो ऋषि तत्व जिसे कहते हैं, रिद्धि सिद्धि सब अंदर ही है। उपनिषदों में भी कहा है ना, आत्मावारे ज्ञातव्या, स्वयं को जानो, खुद को पहचानना जगाना, यही तो है अध्यात्म का सार,
भीतर के जीन को जगाने जैसा।
हाँ, एक तरह से कह सकते हैं वो जीन जो आत्मा है, हमारा सूक्ष्म शरीर जिसे हम सपने में अनुभव करते हैं, वो इस स्थूल शरीर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। तो ये सब सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर क्या पूज्य गुरुदेव ने इस अंदर की शक्ति को जगाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीके भी बताए हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकें?
हाँ हाँ बिल्कुल, और यही तो पूज्य गुरुदेव की खूबी है। उन्होंने बड़े सरल लेकिन असरदार छोटे छोटे अभ्यास बताए हैं। इन्हें वो 6 संयम कहते हैं। अगर इन्हें नियमित रूप से किया जाए तो बड़ा बदलाव आता है।
6 संयम कौन कौन से?
पहला है अस्वाद व्रत, मतलब भोजन में जो तेज स्वाद है जैसे नमक शक्कर, इनका त्याग करना, जीभ पर कंट्रोल।
अच्छा।
दूसरा वाणी संयम, बोलने से पहले सोचना, कम बोलना और रोज कुछ समय मौन रखना।
ये जरूरी है।
तीसरा ब्रह्मचर्य, यहाँ मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि विचारों की पवित्रता से है, ऊर्जा को बचाना, कामुक विचारों की जगह सकारात्मक चिंतन जैसे भीष्म या हनुमान जी का स्मरण।
ठीक है।
चौथा अर्थ संयम, यानी पैसे का संयम, फिजूल खर्ची रोकना, सोच समझ कर खर्च करना।
ये तो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है।
बिल्कुल। पांचवा समय संयम, समय का सही इस्तेमाल करना, टाइम टेबल बना के काम करना, व्यर्थ ना गवाना।
और छठा?
छठा है विचार संयम, मन को भटकने से रोकना, जो जरूरी काम है उन पर ध्यान लगाना, व्यर्थ की चिंता या कल्पनाओं से बचना।
ये सुनने में तो वाकई छोटे छोटे अभ्यास लग रहे हैं, पर लगता है कि यही ब्रह्मवर्चस की साधना की असल चाबियां हैं।
सार यही है। बिल्कुल, ब्रह्मवर्चस कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, ये तो आंतरिक शुद्धि। इन 6 स्तरों पर संयम और मन की एकाग्रता से धीरे धीरे हमारे अंदर ही विकसित होने वाली दिव्यता है। ये एक प्रक्रिया है, खुद को तपाकर, परिष्कृत करके अपने अंदर छिपी हुई असीम शक्तियों को जगाने की।
तो पूज्य गुरुदेव का संदेश बिल्कुल साफ है, भगवान की खुशामद करने या सिर्फ नाक रगड़ने के बजाय अपने व्यक्तित्व को सुधारना, उसका विकास करना, यही असली अध्यात्म है और इसी से मनुष्य देवत्व की ओर बढ़ सकता है।
जी।
और अंत में सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये रोजमर्रा के जीवन में अपनाए जाने वाले साधारण से दिखने वाले संयम और तप जब लगातार किए जाते हैं निरंतरता से, तो वो हमारे भीतर सोई हुई उस विराट शक्ति को कैसे अनलॉक कर सकते हैं जिसका जिक्र पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। ये वाकई आत्म रूपांतरण की एक सतत गहरी यात्रा है।
आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।